دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ویلکم ٹو دا پروگرام پاکیزہ زندگی۔ اس پروگرام کے اندر ہم ان باتوں کو ڈسکس کیا کرتے ہیں، اگر ہم اسے اپنی لائف پر اپلائی کریں تو ہماری زندگی اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ خوشگوار پاکیزہ زندگی ہو جائے گی۔ آپ کوشش کیجئے اس پروگرام کو شروع سے آخر تک دیکھیے، ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ دین کی بہت زیادہ پیاری پیاری اور بہت اچھی اچھی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اس پروگرام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں ہم شامل کرتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی گلدستے، جو ان کے مدنی مذاکروں سے لیے جاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی، ان کے ذریعے بھی ہم بہت پیاری پیاری باتیں سیکھنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی کی طرف اور جانتے ہیں کہ آج کس موضوع پر ہمیں وہ پیاری پیاری باتیں، دین کی باتیں سکھانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
خیریت سے حضور؟
اللہ پاک کا کرم ہے، دامن مصطفی کریم ہاتھوں میں ہے، آپ خیریت سے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین، علی کل حال۔ حضور، آج یہ کیا ہمیں بتانے والے ہیں کہ اس سے ہمارا حال دنیا اور آخرت میں بہتر رہے؟
بہت مشکل موضوع ہے۔
اللہ اکبر، تو کیا کریں پھر، مدنی چینل کے ناظرین چلے جائیں، مشکل باتیں کرنے والے ہیں، مشکل
بات ہو جائے گی۔ ہاں تو مشکل تو ہے ہی، اور مشکل پیپر میں کامیاب ہونے والے ہی بالآخر کامیاب ہوتے ہیں، آسان پیپر میں تو اوور آل ساری پبلک کامیاب ہو ہی جاتی ہے۔ خیر، میں آپ کو آیت کریمہ پہلے سناؤں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ ترجمہ، وہ ایک دوسرے کو کسی برے کام سے منع نہ کرتے تھے جو وہ کیا کرتے تھے، بے شک یہ بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے، یعنی آپ یوں سمجھیے، بہت برائیاں معاشرے کے اندر، آپ سیمینار کر رہے ہیں، آپ کانفرنس کر رہے ہیں، کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، یا آپ بیٹھے ہوئے کہیں آپ کی سپیچ ہے، کہیں ڈیبیٹ ہے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک چیز وہ ہے کہ جب تک بندہ ایک برائی کو نہ روکے گا،
اچھا،
برائیاں ختم نہیں ہوں گی۔ تو قرآن پاک بیان فرما رہا ہے، وہ ایک دوسرے کو کسی برے کام سے منع نہ کرتے تھے، یہ بہت بڑی برائی ہے۔
اچھا،
یعنی ایک برائی سے بچ جانا وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر برائی سے دوسروں کو نہ روکنا یہ برائی ہے۔
یعنی آج کا جو موضوع سمجھ میں آ رہا ہے، وہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ برائیوں سے لوگوں کو روکنا بھی ہے، برائیوں سے لوگوں کو منع بھی کرنا ہے۔
دس از اے پارٹ آف ٹاپک۔
اچھا،
یہ پورا ٹاپک نہیں ہے، اس پارٹ آف ٹاپک ہے۔ اصل موضوع یہ ہے کہ دینی معاملات میں بے جا نرمی، یعنی دین متین نے جو چیز لازم کیا اس کو بہت پولائٹ لے کر، سافٹ لے کر، آپ سائڈ کر کر چلے گئے، یہ والی پوزیشن جو ہے آج کا موضوع ہے۔
بات یہی آئے گی کہ جیسے آپ نے فرمایا شروع میں، بات سے سمجھ میں آیا کہ موضوع آج ہمارا یہ ہے کہ دوسروں کو برائیوں سے روکنا، تو ایک تو یہ ہے نا کہ حضور، ایک تو ہم خود رک گئے تو یہ کافی نہیں ہے، ہم دوسروں کو بھی منع کریں، اور پھر یہ کہ جو آپ نے فرمایا کہ دینی معاملات کو آسان لینا، پولائٹ لینا، یہ جو ہے قابل گرفت ہے اور قابل مذمت ہے۔ تو حضور، دین تو آسان ہے، دین تو نرم ہے، تو اگر ہم نرمی سے نہیں لیں تو اور کیسے لیں پھر؟
دیکھیں، نرمی سے لینا اپنی جگہ پر ہے، وہ بات نہیں ہو رہی، ایک ہو رہا ہے کہ اس چیز کو پولائٹ لینا، یار کوئی بات نہیں، تھوڑی سی آگ لگی ہے وہاں پر، کوئی بات نہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، تو وہ آگ بڑھتے بڑھتے یہاں پر آ جائے گی۔ ایک چیز کو لائٹ لینا اور ہے، ایک ہے کہ ایک چیز کو اچھے انداز سے، کسی سچویشن کو اچھے انداز سے ٹیکل کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ دونوں چیزوں کو میچ نہ کریں آپ، ये एक काम है, एक चीज को समझाना है, एक पे डिबेट करनी है, किसी पे काउंसलिंग करनी है, किसी पे स्पीच करनी है, किसी पे कॉन्फ्रेंस करनी है, ये सारी चीजें अपनी जगह पर है। बात ये हो रही है कि आपने एक स्टैंड लेना है, एक काम करना है, कहाँ करना है, किसने करना है, कैसे करना है, इसकी एक डिटेल है। यहाँ ये बात है कि इस आयत के तहत उलमा फरमाते हैं इससे मालूम हुआ कि बुराई से लोगों को रोकना वाजिब है और गुनाह से मना करने से बाज रहना सख्त गुनाह है। दो बड़ी अहम बातें। एक शख्स खुद गुनाह करता है,
सही,
ठीक है, लेकिन उसको इस तरह की कोई इख्तियार है कि दूसरा गुनाह करता है ना उसको रोक सकता है।
सही।
मिसाल के तौर पे खुद शराब पीता है, दूसरे को शराब पीने से रोक सकता है।
अच्छा,
तो अब इसकी दो जिम्मेदारियां हैं।
सही।
फर्स्ट तो ये कि वो खुद शराब छोड़े,
ठीक है,
लेकिन सेकंड ये भी जिम्मेदारी है उसकी कि दूसरे को शराब पीने से रोके। यानी खुद शराब पी रहा है और दूसरे को रोक रहा है, वो ठीक है कि ये चीज शरीयत को पसंद नहीं है कि भाई खुद बुराई करते रहो दूसरों को रोकते रहो, इस जहस से पसंद नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से फायदा क्या है, एक बुराई हो रही है और एक बुराई रुक रही है, तो चलो भाई बुराई तो रोक दो,
ठीक,
खुद कर रहे हो बुराई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बुराई रोकने वाले ना बनो। पहली तो चीज शरीयत की डिमांड ये कि आप बुराई ना करें, लेकिन अगर आप बुराई कर रहे हैं फिर भी आप बुराई रोक सकते हैं, तब भी आप बुराई रोकने वाले बनेंगे।
सुभान अल्लाह जी। मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बहुत अहम बात हमें सीखने को मिली। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आदमी जब खुद किसी बुराई में, गलत कामों में मुब्तला होता है, तो अब वो फिर बेपरवाह हो जाता है। इस मामले में भी ठीक है, अगर दूसरे भी बुराइयों में मुब्तला हैं, इवन उसकी फैमिली के कोई अफराद जो है वो तरह तरह के गलत कामों में भी मुब्तला हैं, तो वो यही सोचता है ठीक है मैं कौन सा नेक हूँ, मैं कौन सा बड़ा नेक हूँ जो इनको मैं नेक बनाऊँ या इनको बुराई से मना करूँ। तो यहाँ पता चला कि दो हुक्म है शरीयत के, एक तो ये कि खुद भी बुराई से रुकना है और दूसरों को भी रोकना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो खुद बुराई कर रहा है नहीं रुक पा रहा तो अब वो दूसरों को भी नहीं रोकेगा, नहीं, ये नहीं है। अगर वो खुद नहीं भी रुक पा रहा, अव्वल तो रुकना है खुद भी, लेकिन दूसरों को अगर वो रोक सकता है तो दूसरों को जरूर मना करे। ये मतलब नहीं होता अगर एक पूरा ही कोई काम वो नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं है पूरा ही छोड़ दे। अरबी में कहते भी ना माला युद्रकु कुल्लू वला युद्रकु कुल्लू, अगर आप किसी चीज को पूरा नहीं हासिल कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा ही छोड़ दें, कुछ कर सकते हैं तो उतना करना चाहिए
जी। लेकिन ये फायदा जरूर होता है इसमें, जो बुराई को रोकने वाला होता है वो बुराई को रोकना खुद उसके बुराई के रुकने का सबब बन जाता है। तो यहाँ बुराई करने की एप्रिसिएशन नहीं है,
ठीक है,
कि वो जो बुराई कर रहा है वो भी जहन्नम में लेकर जाने वाला काम है। अगर गुनाह कर रहा है, बुराई का मतलब गुनाह है, अगर वो गुनाह कर रहा है, शराब पी रहा है, तो ये खुद जहन्नम में लेकर जाने वाला काम है। लेकिन बुराई से ना रोकना जबकि कुदरत हो, ताकत हो और बुराई भी गुनाह हो, यानी गुनाह से ना रोकना जबकि कुदरत है, ताकत है, तो ये भी बुराई है, ये भी गुनाह है, ये भी जहन्नम में लेकर जाने वाला काम है। तो दो जहन्नम में लेकर जाने वाले काम नहीं करने चाहिए, दोनों ही छोड़ देने चाहिए। और अगर खुदा ना खास्ता एक नहीं छोड़ रहे तब भी दूसरा छोड़ना होगा। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो बुराई देखे तो उसे हाथ से रोक दे, अगर इसकी ताकत ना हो तो जबान के जरिए, अगर इसकी भी कुदरत ना हो तो दिल में बुरा जाने और ये कमजोर ईमान वाला है। हजरत इबादा बिन सामित रजी अल्लाह ताला ने फरमाते कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बैत की जिसमें ये भी है कि हम जहां भी हो हक ही कहें, अल्लाह पाक के बारे में किसी मलामत करने वाले की मलामत से ना डरे, यानी हम मुदाहनत फिर दीन ना करेंगे, हर छोटे बड़े के सामने हर जगह हर वक्त सच्ची बात कहेंगे, हर मुसलमान अपनी ताकत के मुताबिक मुबल्लिग है। बड़ी अहम बात क्या हो गई कि भाई एक चीज हक है और मिसाल के तौर पे आपसे मशवरा मांगा जा रहा है, आप मशवरा देंगे तो वहां पर भी आपको इस बात का ख्याल रखना होगा, फिर अगर कोई बुराई देखी जा रही है आपको कुदरत है तो बोलना होगा, यानी जहां पर आपको बोलने का मौका है वह आपको बिल्कुल सही बोलना पड़ेगा।
अच्छा, यहाँ एक चीज जहन में आई थी हमारे, हो सकता है मौजू से बात हट रही हो, लेकिन चूंकि जिक्र है हदीस में, लिहाजा मैंने कहा इसको बात कर लेते हैं और मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए भी इसमें यकीनन सीखने के लिए होगा। हुज़ूर, इसमें जिक्र जो आ रहा है कि वो सहाबी रसूल हज़रत इबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बैत की, तो यहाँ समझ में आ रहा है कि सहाबा इकराम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बैत किया करते थे। आजकल जो हम बैत देखते हैं वो पीरी मुरीदी वाली बैत, तो इस बैत और ये जो बैत का जिक्र है इससे मुतालिक कुछ इरशाद फरमा दें। और यहाँ जो समझ में आ रहा है खुलासतन वो यही कि बैत कर रहे हैं एक अच्छा काम करने के इरादे से कि हमने ये अच्छे काम करने हैं, तो क्या यही बैत आज भी जो हम किसी पीर साहब जो जामे शरायत है उनसे बैत करते हैं तो उसमें भी यही चीज़ दरअसल पेश नज़र होती है?
देखिए, उसमें और चीज़ें भी हैं, एक ताल्लुक है, एक नस्बत है।
सही।
फिर आप ये देखें, बैत जो कराई जाती है सिलसिला कादरिया के अंदर, मशायखे सिलसिला कादरिया में ये बात आपको मिलेगी, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सिलसिले के अंदर भी गुनाहों से भी तौबा करवाई जाती है, नेकियों की तलकीन की जाती है। तो वही बात सरकार अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम अली रिदवान का बैत करना, ये करेंगे ये नहीं करेंगे,
बेसिक है वो, तो यही समझ में आती है कि हम नेक बंदे के हाथ में हाथ देकर ये एक अहद कर रहे हैं कि हम नेक बनेंगे और बुराइयों से बचेंगे।
बैत के मकासद में से एक तो ये कि तरीकत में अपना इमाम बनाना जैसा कि बुजुर्गों ने बनाया, फिर उसके साथ साथ बैत के मकासद में से ये मकसद है कि आपकी दीनी हालत बेहतर हो, अमली हालत बेहतर हो, उसका एक सबब है बैत बरकत। फिर इसमें बैत में और भी तफसीलात हैं और आप बैत की तरफ लेकर गए हैं। तो बहरहाल इन्होंने जो बैत की उसमें ये था कि हम किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे, कोई हमें टोके या कुछ करे तब भी जब मौका होगा बोलने का तो हक बात बोलेंगे, सच्ची बात बोलेंगे, ताकत के मुताबिक बुराई से रोकेंगे, इस तरह की बात आपने बयान फरमाई है। तो अब इसको थोड़ी सी वजाहत इस चीज की करने और समझने के ताल्लुक से आइए आपको एक मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं।
अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है, हम हर जगह अपने हक के बारे में बात कर लेते और इजहार राय कर लेते मगर बुराई को खत्म करने की हिम्मत नहीं होती, और ताकत हो फिर भी बुराई इसलिए ना रोके कि लोगों से बातचीत खराब ना हो जाए, इस बारे में आप क्या फरमाते हैं?
अल्लाह अकबर, अगर बुराई देखी गुनाह हो रहा है और जन्ने गालिब आ गया कि इसको समझाएंगे तो ये मान जाएगा, वाजिब है कि इसको रोके, समझाए, मना करे, तो बहरहाल हर सूरत में किसी की इस्लाह करनी डंडा लेकर ये हम पर फर्ज वाजिब नहीं है। बाद लोग इस्लाह करना चाहते हैं लेकिन इस्लाह करना नहीं आती, तो उनको पहले इस्लाह करना सीखना चाहिए। इस्लाह करने के लिए भी एक ये उसूल है कि सामने वाले की नफ्सियात को परखने की सलाहियत हो, उसका मान मोबा भी जानता हो कि वो किससे किस तरह बात की जाए। अब बुजुर्ग हैं कोई, कर रहे हैं कोई गुनाह है, 70-80 साल के बुजुर्ग हैं, तो अगर इसको यूं समझाएंगे, अरे बुढ़े अब भी खुदा से नहीं डरता, कब्र में पांव लटक गए, जहन्नम में जाने वाला काम कर रहा है, तो अगर आपका क्या ख्याल है उसकी इस्लाह होगी या खराबी होगी? अरे खराबी ही खराबी होगी, तो इसलिए वो तरीके से समझाना होता है। छोटा है तो उसको उसके अंदाज में समझाना होगा, बड़ा है तो उसके बड़े के अंदाज में समझाना होगा, और मुअस्सिर अंदाज में समझाना भी एक आता हो। ज्यादातर ये काम अहले इल्म कर सकते हैं, आम आदमी इतना कर सकता है जितना आता है उसको, नमाज पढ़ा करो, ये सबको पता है कि नमाज फर्ज है, रोजा रमजान कत रखो, बाकी बारीक मसाइल बयान करने में ये खुद बाज औकात कोताही कर रहे होते हैं। मुफ्ती साहब ने ही गले में एक बार बताया था, एक बार किसी ने आकर मसला पूछने आए कोई इस्लामी भाई और सलाम किया तो मैंने जवाब नहीं दिया या उसको आवाज नहीं गई जवाब के, तो उसने मुझे समझाना शुरू किया कि सलाम का जवाब देना वाजिब है। तो फिर मैंने उसको बताया कि जो साइल होता है, सवाल करने आता है, उसके सलाम का जवाब वाजिब नहीं होता, तो तुमने मुझे तौबा का कर, तौबा तो तुम पर आएगी, तो बगैर गुनाह के मुझे गुनाहगार करार दिया। इस तरह का एक चुटकुला बताया था। तो इसलिए शरीयत के अहकाम भी पता हूँ कि जो समझा रहे हैं ये 100% हम दुरुस्त भी समझा रहे हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
जी मदनी चैनल के नाज़रीन, क्या बात है शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की। और पीर बनाने के मकासद में से एक मकसद ये भी है ना कि जो पीर साहब हैं वो हमें दीन पर चलाया करते, दीन की अच्छी अच्छी बातें बताया करते हैं, तो हमें बहुत कुछ इससे सीखने को भी मिला कि दीन की बात हमने समझानी है, किस अंदाज से समझानी है, निकी का हुक्म देना है पर किस अंदाज से देना है यह हमें आना चाहिए। और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम समझ रहे होते हैं कि हम तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं या गुनाह से रोक रहे हैं, और पता चल रहा होता है यहाँ हमारी ही कम इल्मी है। तो हुज़ूर मज़ीद क्या इरशाद फरमाएंगे कि बुराई से तो रोकना है पर यहाँ तो गुलदस्ते से, मदनी गुलदस्ते पता चलता है कि ये तो एक बड़ा मुश्किल सा काम हो गया, पहले तो इतनी सारी जहतें सीखनी पड़ेंगी।
जी, आप यूँ समझिए कि आप ट्रैफिक पुलिस वाले बन रहे हैं तो पहले आपको कुछ तो पता तो होना चाहिए कि किस तरह चलाना है, किस तरह डील करनी है। हर जगह की गाड़ी एक साथ खोल लेंगे तो फिर एक्सीडेंट होंगे, और हर जगह की रोक कर बैठे होंगे तो गालियां सुनेंगे। तो अब वो वाली चीजें है ना कि हर काम करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। इवन ये कि आपको गाड़ी चलानी है तो आपको गाड़ी चलाना भी आनी चाहिए, ये एक दीन का मामला है। तो अब इसको किस तरह करना है, जैसे बहुत आप समझो बहुत जामे गुफ्तगु अमीरुल सुन्नत की, अंदाज बूढ़े आदमी से किस तरह बात करनी है, बुजुर्गों से किस तरह बात करनी है, हालांकि वो बुजुर्ग गलती भी कर रहे हैं तो किस तरह समझाना है, फिर उसके बाद किसको समझाना है, क्या समझाना है, उसकी मालूमात कितनी है, आपके पास इतना इल्म है नहीं है, क्या पोजीशन है आपकी, अपनी पोजीशन क्या है, फिर आप आएंगे। लेकिन देखिए इसमें जो चीज समझनी होती है ना, मोटी मोटी बातें जो हम देख रहे हैं, हम हमारा टारगेट आप यू समझिए इस वक्त अपना घर ले ले,
ठीक है,
हमारा घर और घर में होने वाली बुराइयां, हमारी औलाद में होने वाली बुराइयां, हमारे भाई बहनों में होने वाली बुराइयां, हमारे स्टाफ पे, मैं ऑनर हूं तो मेरे पास जो मिसाल के तौर पे एम्प्लाइज हैं उनके अंदर होने वाली बुराइयां, मैं बॉस हूं तो मेरे स्टाफ पे होने वाली बुराइयां। तो आप इस पोजीशन पर आकर एक नजर खड़े हों कि आपकी दुकान पर हैं आप, आपके पास एम्प्लाइज हैं, नमाज के लिए नहीं जा रहे तो आप नमाज का बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, आपकी बात को टाल देगा या मान लेगा, या क्या पोजीशन होगी, इस चीज की तरफ आए। वालिद हैं तो वो ये सोचें औलाद के बारे में कि औलाद को समझाएंगे, बिलखुसूस जो छोटी औलाद होती है उसको तो आप समझे समझाना इतना मुश्किल नहीं होता, भाई नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़नी है, पूछ लिया तो बच्चे आएंगे इसकी तरफ, तो आप थोड़ा इस साइड पर आए, ठीक है,
ठीक है।
और इसमें ये भी एक चीज है कि जहां पर ये जो इसके लिए टर्म यूज होती है उसको कहते हैं मुदाहनत, यानी जहां पर दीनी मामले में इंसान का कमजोरी, कम हिम्मती का मुजाहरा करना, मसलन बेपर्दगी के मामला थे, आप बोलेंगे तो बंद हो जाएंगे फिर भी नहीं बोल रहे। एक तो ये कि पोजीशन ऐसी है कि भले आप बाप हो औलाद को नहीं समझा सकते, भाई औलाद का ये मतलब नहीं है कि आपने जो बोल दिया तो वो कर लेगी, ये तो होता है कि आप खाने के लिए लाकर देंगे तो खाएगी, आप पहनने के लिए लाकर देंगे तो पहनेगी, लेकिन आप जो कहेंगे वो करेगी ये नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है कि इस ये कंपल्सरी भी नहीं है कि इस तरह ना होता है ना लाजिम है कि औलाद अपने वालिदैन की हर बात को मुताबिक चले और ज़हनी तौर पर मैच हो। एज डिफरेंस भी होता है पासों का, मिसाल के तौर पे औलाद में एज डिफरेंस कई सालों का हो चुका होता है, ज्यादा होता है, तो फिर समझना समझाना ही मुश्किल हो चुका होता है।
यहाँ मैं चाहूंगा कि जैसे अभी आपने जो रिवायत सुनाई थी उसमें भी इसका जिक्र था ना मुदाहनत का, तो मुदाहनत वर्ड हो सकता है मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए बास के लिए नया भी हो और बास के लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी हो, तो ये स्पेसिफिक क्या तारीफ बनेगी मुदाहनत की, ये अगर इसको बयान कर।
देखिए इसमें दोनों बातें आएंगी ना, एक तो यही बात आ गई कि नाजायज और गुनाह के काम को देखने के बावजूद, ताकत होने के बावजूद उसको ना रोकना, जो हम जिस चीज को लेकर चल रहे हैं। अब चूंकि ये एक पूरी टर्म है तो इसको यूं समझ लीजिए, दीन के मामले में बेजा नरमी इख्तियार करना, दीनी मामलात में कमजोरी और कम हिम्मती का मुजाहरा करना, یعنی دین کی تعلیمات کا خون ہو رہا ہے اور آپ کو طاقت بھی ہے بولنے کی، لکھنے کی، سمجھانے کی، نہ سمجھانا ہے نہ بولنا ہے، ٹھیک ہے بھائی دوسرے کر رہے ہیں کرنے دو، فلا ہے کر رہے ہیں کرنے دو، یہ والی بات نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک چیز ہے، چونکہ ہم اس وقت لازمی بات ہے بتائیے چینل پر ہیں، تو ایک چیز جو ہم سب سے عام طور پر ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ برائی کو دیکھ کر برائی سے نہ روکنا.
یا اس میں یہ بھی آئے گا جیسے کوئی دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے آپ اس کو برائی سے نہیں روک رہے، کیونکہ مثلا سیٹھ صاحب ہیں، اب سیٹھ صاحب سے بڑے اچھے ٹرمز ہیں اور بڑی وہ خیر خواہیاں بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن اب وہ کوئی یوں سمجھیے غیبت کر رہے ہیں یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، اب اگر آپ انہیں روکتے ہیں بھلے کتنے اچھے انداز سے روکتے ہیں، لیکن یہ تو رہتا ہے نا جس کو برائی سے روکا جائے تو اسے بعض اوقات برا لگ جاتا ہے، اب اگر اس کو منع کیا تو وہ جو ہے ایسا نہ ہو سیٹھ صاحب ناراض ہو جائیں اور پھر ان کی خیر خواہیاں رک جائیں، یا ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ جو ہے غلط سلط مسئلے بیان کر دیے جو ان کی خواہش کے مطابق ہو تاکہ یہ خوش ہو جائیں، تو یہ بھی مداہنت میں آ جائے گا.
دیکھیں دین کے اندر بے جا نرمی اور اس چیز کو ہلکا لینا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اچھا جہاں آپ نے سیٹھ کی بات کی نا، سیٹھ میں تو ایک ہے وہ بات کہ سیٹھ اپر ہے، سیٹھ سے اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ آپ کو گمان غالب ہو جائے کہ میں بولوں گا مان لے گا. کیونکہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مذہبی حلیے والا نیک نوازی آدمی کسی کی دکان پر کام کرتا ہے فلا کرتا ہے تو دینی معاملات میں سیٹھ اس کی بات کی اہمیت دیتا ہے، بھائی مجھے گیارہویں کرنی ہے تم بتاؤ کیسے کروں، مجھے یہ کام کرنا ہے تم بتاؤ. پھر وہ کہ سیٹھ صاحب یہ بات تھی آپ نے یوں بولی، یوں بولنی نہیں چاہیے تھی، یہ تو غیبت ہو جائے گی. اب ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے پھر جا کر اس کو جب گمان بھی غالب ہو جائے نوکر کو کہ میں سیٹھ کو بولوں گا تو سیٹھ مان لے گا، اب کہیں گے. یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے لیکن ممکن ہے. یہ ایک چیز ہوتی ہے جیسے ہماری گیدرنگ ہے،
صحیح
گیدرنگ میں دو دوست ہیں، اب آپ یہ سمجھے کہ لیول برابر ہو گیا، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یارانہ ہے، تھوڑا اچھا ماحول ہے، فرینڈ شپ ہے، سب کچھ ہے، فرینڈ سرکل ہے. اب دوست نے گالی دے دی، اب اگر آپ اس کو بولتے ہیں کہ بھائی میرے سامنے آپ نے گالی نہیں دینی یا میرے سامنے کی جگہ دوسری وقت کی اجازت تو آپ نہیں دیں، آپ گالی نہیں دیا کریں. مثال آپ نے کسی برائی سے روکا تو اب دوست آپ سے چڑھائی تو کرے گا نہیں، لیول برابر ہے نا، ایسا تو ہے نہیں نہ آپ کو سیلری دے رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے، لیکن یوں سمجھے کہ اس بات بولنے سے ہو سکتا ہے تھوڑا گیپ ہو جائے، ریزرو ہو جائے آپ سے، تو آپ ڈریں گے نہیں یار کوئی بات نہیں دوسرا کرتا ہے، باقی کیا ہماری تو اپنی دل لگی ہے، وہ غلط کر رہا ہے تو اس کا جواب دے وہی ہے، بھائی اس کے گھر پہ آگ لگی ہے تو کیا ہوا، جو پڑوس میں آپ کا گھر ہے آپ کا گھر کیسے بچے گا، آگ یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ ایک ساتھ سو گھروں پہ لگی ہوتی ہے، پہلے ایک ہی گھر میں آگ لگتی ہے پھر وہ بڑھتے 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 کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، کتنی عمارتوں تک پہنچ جاتی ہے آگ، آگ جب بڑھتی ہے تو وہ اسی انداز سے بڑھتی ہے. تو یہاں پر یہ جو بات ہے اس کو سمجھے. ہاں ایک بات ہے یہاں میں ایک بات لکھی کہ اگر دین کی سلامتی اور مسلمان کی اصلاح کی خاطر چشم پوشی کر دی، تھوڑا اوائڈ درگزر اس لیے کیا کہ ابھی اس کو سمجھانے کا موقع نہیں ہے،
صحیح
اسی وجہ سے کہ بندے کو کسی اور موقع پہ سمجھایا جائے گا، تو اسے کہتے ہیں مدارات. یہ یہاں پر آپ نے جو رعایت کی ہے نا وہ یہ کہ کسی اور موقع پہ پکڑ لوں گا، ابھی موقع نہیں ہے، کسی اور موقع پہ سمجھا دیں گے، ابھی موقع نہیں ہے. مگر یہ کہ اس چیز کے معاملے میں بندہ بالکل یار جاؤ کر لو، یہ والی پوزیشن نہیں ہے، اس نے کیا خاموش ہو گئے، ریزرو ہو گئے، لیکن موقع دیکھ کر اس کو سمجھانے کے لیے رک گئے.
کیا بات،
یہ والی ایک چیز ہے، یہ صحیح ہے، اس کو مدارات کہتے ہیں. اور اگر دنیا حاصل کرنے جس کی مثال ہوئی، نفسانی خواہشات میں یہ بھی ہو گیا کہ آپ کا دوست ہے تو اس سے بات خراب نہیں ہونی چاہیے، سیٹ ہے تو پیسے ملنے چاہیے وغیرہ وغیرہ، ان کی وجہ سے خاموشی اختیار کرنا یہ مداہنت ہے.
جی مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ مداہنت کیا ہوتی ہے اور اس کے حوالے سے جو دیگر مسائل ہیں وہ کچھ کچھ جاننے کی کوشش کی. تو اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے دنیاوی بہت سارے معاملات میں یا زندگی کے اندر اس چیز کے اندر مبتلا ہو رہے ہوں، کہیں ہم مداہنت کو برت رہے ہوں، کہیں ہم طاقت رکھتے ہیں کے باوجود یا سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کو بتائیں گے وہ مان جائے گا، لیکن اس کے باوجود اسے برائی سے نہیں روک رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے. اور پھر سمجھانا کیسے ہے इसको भी समझने की ज़रूरत है। पहले हम समझेंगे कि समझाना कैसे है, तो उसी के बाद समझा सकेंगे, वरना फिर हो सकता है हम बिगाड़ दें।
जी, एक तो बात हो गई बुराई देख रहे हैं, इसके अलावा जैसे होते हैं ना, जो आपने कहा दीन के मामलात के अंदर, उसकी मिसाल एक आला हजरत ने बयान की है, जो शख्स नमाज के मसाइल ना जानता हो या कुरान पाक दुरुस्त नहीं पढ़ सकता, उसको इमामत पे खड़ा कर दिया।
सही।
तो अब लाजमी बात है, कुरान पाक गलत पढ़ेगा तो नमाजें खराब भी कर सकता है, मसाइल नहीं पता होते तो ऐसी गलती हो गई कि नमाज जो है वो खराब हो जाएगी। तो अब ऐसे शख्स को किसी को आगे बढ़ा देना, इससे आला हजरत ने मुदानत करार दिया कि दीन की बात को हल्का लेना है।
लेकिन हुजूर, जिसको आगे बढ़ाया वो तो कमेटी के सदर साहब हैं या जो है वो सेक्रेटरी जनरल हैं।
फिर आपने मदनी गुलदस्ता सही तौर पर देखा नहीं है। इस सारे मामलात के लिए इल्म का होना जरूरी है। यानी अभी हमने दूसरे फेज की एक दो मिसालें आपको दे रहे हैं, और मिसाल के साथ हमारा असल टॉपिक तो बुराई से रोकना, और जो नॉर्मल बुराइयां हमारे यहाँ पाई जाती है वही हैं जिसका एक तादाद से जो है वो ताल्लुक हो। लेकिन चूंकि टॉपिक है तो टॉपिक के अंदर दूसरी चीज जो शामिल है उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। किसी ने घुटना खोला हुआ है तो अब वही जो बात नरमी सख्ती वाली बात जो आपने की है, तो बाहर शरीयत में लिखा है उसको नरमी से मना करेंगे।
ठीक है,
आप शॉर्ट पैंट्स पहन रहे हैं आजकल, नौजवानों को बीमारी हो गई है बेचारों को। अल्लाह पाक हिदायत दे, अकल दे, शर्म दे, हया दे कि वो ये काम ना करें। शॉर्ट पैंट पहनकर घुटने खोले हुए होते हैं, ये भी छुपाने वाला हिस्सा है, ये जाहिर होता है। तो अब इनको नरमी से ही मना किया जाएगा, और मिसाल के तौर पे इससे ज्यादा कुछ हिस्सा इनका खुला हुआ है, सख्ती से मना करे और बाज ना आया तो उसको मारने की इजाजत नहीं। कुछ ज्यादा अगर उसने खोल दिया तो थोड़ा सा उसको सख्ती से मना कर दिया। इससे आगे भी कुछ स्टेप्स हैं, वो फिर वालिद और हाकिम वगैरह के हैं, जिसका हमसे ताल्लुक नहीं है। एक चीज को समझना जरूरी है। तो अब वो वही बात हो गई कि ये जैसे इस तरह की जो नरमी है, इसका हुक्म के दीन के मामले में ताकत होने के बावजूद, कुदरत होने के बावजूद आप हराम काम को नहीं रोक रहे, तो ये खुद हराम और जहन्नम में लेकर जाने वाला काम हो गया। और जहां रोकने की ताकत है, बुराई पर रोकने की कुदरत है, तो अब उसको रोकना फर्ज़ ऐन है, कंपलसरी है, लाजिम है, आपकी दीनी और शरई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी है आपकी, आप ये काम करेंगे।
यानी जिसको हम समझते हैं कि हम में ताकत है कि इसको समझा सकें, तो इसमें ये भी तो होगा कि अगर हमें लगता है कि हम समझाएंगे, हम समझा तो सकते हैं, लेकिन ये मानेगा तब हम पर लाजिम होगा, या हम समझते हैं हम समझा सकते हैं तो बस हम समझाएं, चाहे हमें पता है मानेगा नहीं है।
देखिए, मानेगा नहीं और मारेगा भी नहीं।
ठीक है,
तो समझाना मुस्तहब है, अच्छी बात है। मिसाल के तौर पर आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं, आपको पता है इसने गाना तो बंद करना नहीं है, लेकिन आप चूंकि लाजमी बात है उसको किराया पे कर रहे हैं बसेस में, हमारे यहाँ और इस तरह की जो कंट्रीज होती है उसका ये माहौल होता है, तो अब आप चूंकि किराया पे कर रहे हैं तो वो आपसे लड़ेगा भी नहीं, सर इसको बंद कर दे, उसको सुन लिया, वो सुनी अनसुनी करे, आपको गुमान गालिब है, तजर्बा है, बंद नहीं करते। लेकिन आप बोलेंगे तो ये बोलना मुस्तहब है कि आप उसको अच्छे अंदाज से बोले, और उसका एक फायदा ये है कि उसके जहन में ये बात होगी कि आज नहीं तो कल सही, परसों सही, कभी सही। तो ये वाली चीज जो होती है वो कभी हो सकता है कि उसको असर जहन में एक तासुर ही पैदा हो जाए कि लोग इससे परेशान होते हैं।
जी, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ हमें समझने की बात ये भी है कि हम अपनी तरफ से कोशिश करें, बात यही है ना कि अगर हम समझाएंगे तो अव्वल तो ये समझाना फ़ायदा देता है, और दूसरी बात जो इरशाद फरमाई मुबल्लिग दावत इस्लामी ने भी कि कम से कम उसके जहन में ये बात तो जाएगी कि ये चीज़ गलत है और इसको गलत समझने वाले हैं। बात यही है कि जब गलत को गलत कहा जाता है तो वो कम से कम कुछ ना कुछ तो उस पर फ़र्क पड़ता ही है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती, अगर वो बढ़ भी रही हो वो बुराई, तो हम अपनी तरफ से तो कोशिश करें और कोशिश का नतीजा अच्छा आया करता है।
आपको एक और मदनी गुलदस्ता मेरे सुन्नत का दिखाते हैं।
अपने अहल आयाल वगैरह की गलत बातों पर को ना समझाना क्या है, और किसी औलाद वगैरह की ऐसी बात देखें तो क्या करें, इस हवाले से जवाब इरशाद फरमा दीजिए।
अगर जन्ने गालिब है, जवान औलाद है, वो खिलाफ इशारा हरकतें कर रही है, जन्ने गालिब है कि मान जाएगा समझाऊंगा, तब तो समझाना इस पर फर्ज हो जाएगा, नहीं समझाएगा तो गुनाहगार होगा। पर अगर औलाद है ऐसी ढीठ और नाफरमान, भाषा समझती नहीं है, लैंग्वेज समझती नहीं है, तो अब उसको नहीं समझाया तो घर मजबूर है और कर भी क्या कर सकता है, कैसे समझाए, इसका कोई फार्मूला तो है नहीं। दुआ करे, ये फार्मूला है, दुआ तकदीर को बदल देती है। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का आपने मदनी गुलदस्ता देखा कि औलाद को अगर समझाना है तो क्या करे हुजूर, औलाद नहीं मान रही, तो पहले इसमें ये नहीं आएगा कि औलाद की पहले ही ऐसी तरबियत कर लेते, यानी जिस उम्र में वो मानने वाली थी उसी वक्त समझा लेते?
जरूरी नहीं है कि औलाद जो है वो उसने नहीं माना, यानी औलाद की आपने प्रॉपर तरबियत तो की जो आपके ताकत के मुताबिक थी, लेकिन जो होना था वो हो गया।
सही,
ये भी हो सकता है, लेकिन जब औलाद की प्रॉपर तरबियत हो रही होती है तो कुछ ना कुछ उसके फवायद मिल जाते हैं।
सही, तो
प्रॉपर तरबियत की कमी की वजह होती है कि बंदे जो है वो यहाँ तक इस स्टेप तक आते हैं। बात तो आपकी दुरुस्त है, ये करना चाहिए, लेकिन अब बहरहाल जब पानी सरसों पर हो ही गया तो अब आपके लिए दूसरा स्टेप वही है जो आपको मेरे सुन्नत ने बयान किया है कि आपके पास अगर ताकत है कुदरत है तो आप औलाद को रोकेंगे। यानी ये यहाँ पर ये समझ लीजिए ना, औलाद के मामले में भी बंदा फुल एंड फाइनल नहीं है।
ठीक है,
औलाद के मामले में भी जब ये है तो दूसरे के मामले में ज्यादा सोचना पड़ेगा।
सही,
कि क्या काम कैसे करना है। यहाँ एक बात और भी है, देखिए औलाद के मामले में वालिदैन की, तो फिर वालिदैन के मामले में औलाद की भी।
सही,
रिश्तेदार हों या बड़े हों, उस मामले में क्या किया जाए। एक उसूल याद रखें कि प्यारे आका अलैहि सलातो वसलाम ने इरशाद फरमाया, खालिक की नाफरमानी में मखलूक की इताअत जायज नहीं।
सही।
अच्छा, आला हजरत ने जो इसकी वजाहत की ना हदीस के तहत, आप पे बड़ी प्यारी बातें बयान की, बहुत जबरदस्त बात बयान की। यानी अब यू समझ लीजिए, मैं अपने अल्फाज से अपने हिसाब से एक बात बयान कर रहा हूँ। फर्ज वाजिब है, सुन्नत मौकदा है, जो शरीयत ने लाजिम की हुई चीजें ये नहीं छोड़ेंगे, कोई भी कहे आपको ये बात पूरी करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन इसके लिए बदतमीजी नहीं करेंगे आप, अपना काम करते रहेंगे और इसको छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, किसी के कहने पर कोई गुनाह ना किया जाएगा। तीसरी बात, बड़ी अहम बात यह है कि अगर फर्ज करें मिसाल के तौर पर कुछ बातें ऐसी होती हैं, ऐसी डिमांड्स आती हैं बंदे के तरफ, बरादरी की कुछ रस्म हो गई, कोई ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से कोई मुस्तहब छूट रहा हो, लाजिम चीज नहीं छूट रही लेकिन सवाब का काम जो था वो छोड़ दिया आपने। भाई हमारी बरादरी का की रस्म है कि मैरिज हॉल के अंदर निकाह होता है, तो मस्जिद में निकाह होना ये मुस्तहब है, तो अब हम मस्जिद के निकाह की जगह लोगों के दिल खुश करने के लिए शादी हॉल में निकाह कर लें। इसमें आपने शरीयत का कोई उसूल नहीं तोड़ा। तो ये एक चीज, यानी यूं समझे जो बात हुई ना शुरू में, इल्म का होना कहाँ पर क्या चीज है, एक एटीट्यूड अपनी जगह पर है, सबसे अहम चीज इल्म भी है। कुछ जगह पर खुद शरीयत डिमांड कर रही होती है कि भाई आपने ये बात माननी है, ये मुस्तवा आप छोड़ेंगे और यहाँ पर आप अपनी बरादरी की बात मानेंगे, ये सवाब का काम भी है तो छोड़ देंगे लेकिन बरादरी की मानेंगे। मुस्तहब की बात हो रही है, फर्ज वाजिब की बात नहीं हो रही। दिल में खुशी डालने के लिए आप नाचने लग गए तो गाने लग गए तो भंगड़े शुरू हो गए, तो ये वाले काम करने की इजाजत नहीं है।
सही,
तो अब ये वाली बात जब जहन में होगी तो उसके मुताबिक आप काम कर सकते।
अच्छा हुजूर, अब अगर ये भी थोड़ा इरशाद फरमा दे कि वो क्या असबाब हैं, वो क्या रीजंस हैं कि जिसकी बिना पर आदमी ये मुदाहनत जैसे काम के अंदर मुब्तला होता है या लोगों को बुराई से मना नहीं करता, क्यों होता है ऐसा?
देखिए, ये तो हम वैसे डिस्कस कर ही चुके, लोगों के रख रखाव की वजह से एक चीज होती है, बुरी सोहबतों की वजह से होती है, दुनियावी फायदे भी होते हैं कि भाई वही सेठ की तरक्की, तो ये जो सारे वजूहात हैं ये इंसान को मजबूर करते हैं कि यार दूसरों के लिए रास्ता निकालो आप।
तो फिर इलाज भी इरशाद फरमा दे, बच्चे कैसे?
देखिए, सबसे अहम बात ये है कि बंदे को अल्लाह पाक से कामिल मोहब्बत होनी चाहिए, जैसी बंदा कर सकता है। پھر اللہ کے احکام کے مقابلے میں کوئی حکم اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا.
اللہ اکبر.
اور اللہ کی حدود کے آگے پھر کچھ اور باؤنڈریز اس کو سمجھ میں نہیں آئیں گی.
کیا بات.
اس کے لیے اللہ پاک کے احسانات کو یاد کرے, اللہ پاک نے جو کرم فرمایا اس کو یاد کرے, تو اس سے اللہ کی محبت بڑھے گی. اور جب اللہ پاک کی محبت بڑھے گی تو بندہ اس طرف مائل ہوگا. لیکن سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے علم ہونا بہت ضروری ہے.
بے شک.
فرائض علوم حاصل ہوں, انسان کو پتا تو کہ کون سی چیز برائی ہے کون سی چیز برائی نہیں. جیسے صاحب پہنچ گئے, خود پہنچے تھے مسئلہ پوچھنے کے لیے اور جا کر مسئلہ کر دیا.
ٹھیک ہے.
نہیں, وہ جو آپ کو ایک آیت بیان کی نا, مسئلہ پوچھنے گئے اور مسئلہ کر دیا جا کر,
جا کے مفتی صاحب کو ہی سمجھانا شروع کر دیا.
مفتی صاحب سے توبہ کی ڈیمانڈ بھی کر دی حضرت نے. خیر, اب وہ یہی چیز ہے کہ دیکھیں ہر شخص کو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے, اتنی علم اور معلومات ہونی چاہیے تاکہ اس برائی سے رک سکے. اور اہم ترین بات
جی,
باقی رہنے والی آخرت کو ختم ہونے والی دنیا پر فوقیت دے.
اللہ
کہ آخرت کے معاملات, ثواب عذاب کے معاملات, یہ بہت اہم ہے. عذاب کے اسباب سے بچنا ہے اور صحیح. نیکی کی طرف لے کر جانے والے کاموں کو کرنا ہے.
جی, مدنی چینل کے ناظرین, مداہنت سے کیسے بچیں, ہم دیکھ رہے ہیں برائیاں بڑھ رہی ہیں لیکن ہم برائی کو روک نہیں رہے, حالانکہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم برائی کو روکیں, تو اس پر ہم کیسے گامزن ہوں گے؟ بڑی خوبصورت دو باتیں جو ارشاد فرمائیں. خلاصہ یہی بنتا ہے کہ محبت الہی اور خوف خدا. اگر اللہ پاک کی محبت ہمارے دلوں میں کامل ہوگی تو پھر ہم صرف یہ دیکھیں گے یہاں اللہ پاک کا حکم کیا ہے, میرے محبوب رب کا حکم کیا ہے, اس کے بعد پھر کسی کو خوش کرنا ہے, کوئی مجھے کیا فائدہ دے دے گا, یار یہاں نہیں بولو, نہیں نہیں, ورنہ جو ہے تعلقات خراب ہو جائیں گے. تعلقات خراب ہو گئے تو اس سے تو ذرا یہاں بزنس میں مجھے فائدہ ہونے والا تھا, یار یہ تو بڑا امیر آدمی ہے, اس کو اگر میں نے مسئلے بتانا شروع کر دیے کہ ایسا رہو یہ تو ناراض ہو جائے, اور ناراض ہو گیا, اس نے تو مجھے وہاں فائدہ دینا تھا, بچی کی شادی میں یہ ہیلپ کر سکتا تھا, تو ادھر توجہ نہیں جائے گی. بندہ تو یہ دیکھے گا میرا محبوب رب عز و جل مجھے کیا حکم دے رہا ہے, مجھے وہ کرنا ہے. اگر حکم یہاں پر یہ ہے, جیسا حکم, پہلے وہ حکم بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. علم ہوگا شریعت کا تبھی صحیح انداز سے ہم سکھا سکیں گے, سمجھا سکیں گے. دیکھنا یہ ہے, اگر حکم یہ ہے تو کام بنانے والا میرا رب ہے. اگر میرا رب خوش ہو گیا تو پھر مجھے کسی کو خوش کرنے کی, رب کو ناراض کر کے کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا رب خوش ہو گیا, وہ راضی ہو گیا, وہ میرے سارے کام بنا دے گا, میری بگڑی کو بنا دے گا, تو رب کی محبت ہوگی تو انشاءاللہ ہم برائیوں کو روکنے والے بن جائیں گے. اور خوف خدا ہوگا, اگر احساس ہوگا آخرت کا, کہیں ایسا نہ ہو اگر ہم برائی میں مبتلا ہوئے تو کل بروز قیامت ہمیں پکڑ لیا جائے, جب یہ احساس دل میں ہوگا تو انشاءاللہ پھر ہم شریعت کے مطابق چلنے والے بن جائیں گے. دنیا کو دیکھ کر یا دنیا والوں کی شکلوں کو, چہروں کو دیکھ کر ہم فیصلے نہیں کریں گے, بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ شریعت کیا چاہتی ہے. دعا بھی کر دیجئے کہ اللہ پاک اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین الہ العالمین. جو عاشقان رسول ہمارے ساتھ شامل ہیں سب پر نظر رحمت فرما, ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. الہ العالمین ہمیں برائی سے بچنے, دوسروں کو بچانے والا بنا, گناہوں سے بچنے, دوسروں کو بچانے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. الہ العالمین ہمارے لیے اس راہ میں آسانیاں مقرر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول
اللہ.
دین اسلام پر مجھے یا رب, دین اسلام پر مجھے یا رب, استقامت تو مرحمت فرما.